राधा माधव गाते थोड़ा, राधा माधव तो याद था ना सबको, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन भज जन रंजन, यशोदा नंदन भज जन रंजन, यमुना तीरा वन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गिरधारे राधा गिरधारे राधा गिरधारे राधे जय गौरनिता गौरनिता जय गौरनिता जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद
राधा माधव की जय श्री राधा दामोदर की जय श्री प्रभुपाद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीले तं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब लोग आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, फिर बाद में दीप दान करते समय जाएंगे। शायद कुछ लोग आए तो उनको दिक्कत होगा। अभी देखिए, लाओ एक पेपर मुझे देखो।
बेटा जनक
तो स्वागत है सभी का दीपदान उत्सव प्रोग्राम में। कार्तिक महीना बहुत सुंदर महीना चल रहा है, तो हमने बहुत सुंदर योग बना कि हम इस कार्तिक में गीता कोर्स का समापन किए और कंटिन्यू फिर दीपदान उत्सव प्रोग्राम चल रहा है। तो बहुत सौभाग्य वाली बात है कि हम भगवान दामोदर को दीपदान मिल के कर रहे हैं, और कोई दीप ऑफर कर रहा है, कोई कोई दान दे रहा है सबको ऑफर करने के लिए। तो ये बहुत सुंदर एक फेस्टिवल है पूरे महीने के लिए। एक्चुअली हम दीपावली केवल इस महीने में दीपावली एक दिन का फेस्टिवल मनाते हैं, एक्चुअली पूरा महीने फेस्टिवल मनाना चाहिए। कार्तिक में भगवान दामोदर को दीप दान अर्पण करना चाहिए, उनको दीप दान देने की बहुत महिमा है। तो हमने इस कार्तिक महीने में जो दीपदान में हम इस अष्टकम को गाते हैं, तो मैंने सोचा था कि इसी अष्टकम को मैं सबको एक्सप्लेन करूँगा। तो एक मिस हो गया ना, लेकिन मैंने कल किया ही नहीं वो मैं दूसरा चीज कल बताया, मैं पद्म पुराण के कुछ बातों को बताया जो दीपदान के उत्सव के बारे में। तो हमने एक श्लोक किया है इसका केवल, जिसमें वर्णन है कि नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदा भियोलु खलाद्वामानम परामृष्ट मत्यन ततो द्रुत गोप्या। क्या है इसका अनुवाद? सबसे पहला प्रणाम करते हैं सत्यव्रत मुनि। ये अष्टकम को जो है ना सत्यव्रत मुनि ने लिखा हुआ है, नहीं सत्यव्रत मुनि ने लिखा हुआ है इस अष्टकम को। तो सबसे पहले भगवान को प्रणाम करते हैं कि ईश्वर मैं आपको प्रणाम करता हूँ, जो जिनका रूप कैसा है सच्चिदानंद विग्रह। और उसके बाद जो गोकुल में उनके कानों में कुंडल जो कि लटक रहा है, और गोकुल में वो ब्राजमानम गोकुल में चल रहे हैं वो, और क्या कर रहे हैं कैसा चल रहे हैं, तो यशोदा भियोलो यशोदा के भय से वो भाग रहे हैं और उखल के ऊपर चढ़े हुए हैं। और उसके बाद जब ही माता यशोदा ने देखा तभी वो कूद के भागने लगे, और फिर माता यशोदा ने बहुत तीव्र गति से पकड़ लिया। तो यहाँ तक हमने परसों एक्सप्लेन किए थे। तभी माता यशोदा ने पकड़ लिया, तो इसको देखते हुए सत्यव्रत मुनि ने अष्टकम की रचना किया कि किस प्रकार से सुंदर सा लीला भगवान कृष्ण उस श्रीधाम वृंदावन में इस लीला को संपन्न कर रहे हैं। तो अभी ये लीला कुछ इस प्रकार से है, श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं इस लीला का। बहुत सुंदर लीला है एक्चुअली। ये जो माता यशोदा और कृष्ण का ये जो दामोदर लीला है ना, ये कितने संत मुनिगण इस लीला को स्मरण करते करते पूरा जीवन निकाल देते हैं। ये ऐसी लीला है, इस लीला से बड़े बड़े सीख प्राप्त होता है। मैं उस गीता कोर्स के अंतिम दिन थोड़ा से इस लीला को एक संक्षिप्त रूप में बताया था, लेकिन आज मैं उसको कुछ शिक्षाओं के द्वारा बताते हुए उसको प्रस्तुत करता हूँ। जैसे कि जब ये दीपावली का दिन था, एकदा गृहदा केशु यशोदा नंद गेहिना, यशोदा रानी यशोदा मैया उस नंद भवन में, वह दिन दीपावली का था, उस दिन क्या किया, सभी जितने भी उनके घर में दास दासियां थे सबको छुट्टी दे दिया है ना। दीपावली के दिन छुट्टी मनाते हैं सब लोग ना, सब लोग छुट्टी मनाते हैं दीपावली, और उनके अंडर में जो भी काम करने वाले हैं उनको भी छुट्टी दे देते हैं है ना, बोनस के साथ है ना, दीपावली बोनस है चलते है नहीं चालू प्रमुख, बोनस देना पड़ेगा ना भी सबको। तो इस प्रकार से सबको छुट्टी दे दिया जाता है। तो माता यशोदा ने उस दिन दीपावली का दिन था इसलिए भी सबको छुट्टी दे दिया, लेकिन आचार्य लोग कहते हैं कि एक्चुअली माता यशोदा ने इसलिए छुट्टी दे दिया क्योंकि बहुत सारे ब्रज के गोपियों से कंप्लेन था कि तुम्हारा ये जो लाला है, तुम्हारा ये कन्हैया है, वो क्या बहुत माखन को चोरी करता है, मटकी फोड़ देता है, बहुत परेशान करता है हम लोग को, ये बहुत कंप्लेन आते थे। तो माता यशोदा ने सोचा कि मेरे घर में इतना दूध दही माखन है, 900,000 गायें थी नंद महाराज के इधर, और एक एक से गाय बहुत सुंदर सुंदर गायें थी उनके पास, लेकिन इतना गाय होने के बाद भी मेरा जो बालक है दूसरे के घर में चोरी करने जाता है और गोपियां कंप्लेन भी करती हैं, इसलिए यशोदा मैया ने सोचा कि लगता है कि मेरे मैं खुद दूध दही मक्खन बना के इस कृष्ण को नहीं देती हूँ, इसलिए चोरी करने जाता है क्योंकि उसको पसंद नहीं है। इसलिए माता यशोदा ने क्या किया, आज मैं खुद दही मथूंगी। इसलिए उन्होंने सब दासियों को छुट्टी दे दिया और सुबह की वेला ब्रह्म मुहूर्त में माता यशोदा जगी और जगकर यशोदा मैया स्नान वगैरह करने के पश्चात अभी कृष्ण सोए हुए हैं। अभी जो कृष्ण का एज था कितना है, एज 3 साल 2 महीने। तुम्हारा कितना है, 9 साल। तुम्हारा है, तुम्हारा इसका कितना हुआ, 4। 3 साल। सोचिए कृष्ण का जो एज था उस समय कितना था, 3 साल 2 महीने का बालक थे। अभी वो रूम के अंदर सोए हुए ब्रह्म मुहूर्त का समय है क्योंकि बालक तो इतना जल्दी उठता नहीं है। सुबह मैया यशोदा 3:30-4 बजे जग गई ब्रह्म मुहूर्त के समय स्नान वगैरह करने के पश्चात। आज यही उनका कार्य था कि आज स्वयं दही को मथेगी और मक्खन निकालेगी और कृष्ण को अपने हाथों से खिलाएगी ताकि उसको वो प्रेम और रस प्राप्त हो, ताकि दूसरे के घर में चोरी करने न जाए। तो इस प्रकार से जब माता यशोदा दही को मंथने लगी तो उस समय मथते हुए दही को वर्णन आता है कि कर्मणा मनसा वाचा। माता यशोदा रानी के 3 चीजें वो सेवा में लगी हुई थी। कर्मणा मतलब वो अपने हाथ से क्या कर रही थी, दही को मथ रही थी, अपने हाथ से दही मंथन कर रही थी। कर्मणा मनसा, मन से क्या कर रही थी, वो भगवान के अनेक लीलाओं को स्मरण कर रही थी। ये बहुत देखिए, मैं बोल रहा हूँ ना, आज शिक्षा देते हुए सबको इस लीला को संपन्न करूंगा मैं। तो मन से क्या कर रही थी, वो अनेक लीलाओं को, भगवान की लीलाओं को स्मरण कर रही थी। कर्मणा मनसा वाचा, वाचा मतलब मुख से क्या कर रही थी, वो जो स्मरण कर रही थी उसको गा रही थी, है ना। ते मनसा कर्मणा वाचा तीनों मैया के सेवा में लगे हुए थे, भगवान के तीनों सेवा में लगे। ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत शिक्षा प्रद बात है कि कभी भी कोई माता अगर किचन में कुछ भोग बनाती है या खाना पीना बनाती है सुबह उठ के, तो ये 3 बातों को ध्यान रखना चाहिए कि उसके कर्मणा मनचा वाचा ये तीनों भगवत सेवा में लगा रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, ये तीनों कार्य हमारे साथ भी होता है। देखिए हम भी हाथ कुकिंग करने में चलता रहता है ना, चूल्हे के ऊपर, है ना, ये तो चलता ही रहता है। अभी इसके बाद जो महत्वपूर्ण 2 बातें हैं कि मन से माता यशोदा क्या कर रही थी, भगवान की लीलाओं को स्मरण कर रही थी। तो इस प्रकार से हमको भी क्या करना चाहिए, जब भी किचन में बनाते हैं तो उस समय भगवत लीलाओं को स्मरण करना चाहिए, बहुत सारे अच्छी बातों को स्मरण करना चाहिए और उसके बाद मुख से उन लीलाओं को अगर है तो सुंदर सा गाने के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं या फिर गा भी सकते हैं। ये हमारी वैदिक पद्धति होती थी, आज भी कर रहे हैं लोग, लेकिन क्या है, फिल्मी की बातों को सोचते हैं, फिल्मी पिक्चर की बातों को सोचते हैं, मुख से पिक्चर की गाना गाते हैं, हाँ तो क्या होता है पता है, मन के अंदर सोचते हैं पिक्चर की बातें और फिर उसके बाद गाते हैं मुख से, हाँ अलग अलग प्रकार के गाते हैं, हाँ गाना गाते हैं, हाँ गाना गाते हैं ना, गाना फिल्मी बारे में सोचेंगे तो फिल्मी गाना निकलेगा ना मुख से, क्योंकि जो हम सोचेंगे मन में वही बाहर निकलता है ना, वही बाहर निकलता है। तो अनेक प्रकार के गाना को गाते हैं, हाँ काला पीला क्या क्या गाना है सब सारा याद है ना। तो ये सारे चीजें अलग अलग प्रकार की, जो भी गाना हम गाते हैं वो क्या होता है, वो जो कुकिंग होता है ना उसमें उस चेतना, वही चेतना प्रभावित हो जाती है उस कुकिंग में, उस खाने में वो चेतना डाइवर्ट हो जाते हैं, उसके अंदर चला जाता है। फिर उसके बाद फिर वो कौन खाता है, फैमिली के लोग खाते हैं, तो फिर वो चेतना ट्रांसफर होता है उन फैमिली के अंदर। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ये बात है, देखिए घर के अंदर माताओं के यशोदा रानी से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से हमको एक घर का कार्यकलाप को करना है। बहुत सुंदर तरीके से माता यशोदा के जो मनसा वाचा कर्मणा ये तीनों सेवा में लगे हुए हैं। इससे अगर हम तीनों सेवा में, भगवत सेवा में लगा के रखेंगे तो निश्चित रूप से वो जो खाना है ना, कोई असाधारण खाना नहीं रहेगा, दिव्य खाना रहेगा, वो बहुत सुंदर सा मेडिसिन का कार्य करेगा व्यक्ति के जीवन में। नहीं तो फिर क्या होगा, फिल्मी गाना के साथ वो बनाई रहेगी तो वही मन के अंदर काम वासना की प्रज्वलित होगा, काम वासनाओं की इच्छा जागृत होगा, अनेक अनेक गलत कार्य करने की इच्छा जागृत होगा, ये सारे चीजें उस चेतना प्रभावित हो जाता है उसके अंदर, तो फिर वो व्यक्ति उसी प्रकार का सोच रखता है। सभी देखिए इस प्रकार से माता यशोदा ने क्या किया, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा। ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बहुत महिमा है, सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठना चाहिए व्यक्ति को। ये ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है ना, वो सुबह लगभग 3:30 बजे स्टार्ट होता है और उसके बाद सुबह सूर्य उदय होने से पहले तक, इस ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह सूर्य उदय होने से पहले तक रहता है, मतलब समझ लो 5:30 या 6 बजे तक रहता है, 6 बजे तक रहता है, उससे पहले उठ जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सूर्य उदय होने के बाद भी सोता है तो बहुत सारे रोगों का भागीदारी बनता है, इसलिए उससे पहले उसको उठ जाना चाहिए और नहा धो के रेडी हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से माता है। और यही देखिए टॉप मोस्ट योगा है, एक्चुअली ये टॉप मोस्ट योगा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये बहुत बड़ा योगा है। बहुत अलग से कुछ योग और जिम इत्यादि करने की जरूरत नहीं, अगर कोई सुबह सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठता है तो बहुत बड़ा योगा है ये। देखिए एक कवि बहुत सुंदर से एक बात को बताते हैं कि एक माँ जो है या एक स्त्री जो घर में अपने, मोस्टली स्त्रियाँ घर में जल्दी उठती हैं क्योंकि उनको घर का कार्य करना रहता है, तो क्या करती है वो बताते वर्णन करते हैं कि एक माँ की सुंदरता या एक स्त्री की सुंदरता या एक घर के गृहिणी की सुंदरता उसी में है कि वो सुबह जल्दी उठे, फिर सुबह जल्दी उठकर वो क्या करती है, नहाती धोती है और तुरंत ही घर के कामों में लग जाती है, खाना पकाना शुरू करती है, तब तक बच्चे को उठाती है और उसके स्कूल जाने का टाइम हो जाता है, फिर उसको स्कूल के लिए तैयार करती रहे, उसको टिफिन बना के देती है और उसके बाद तब तक पति का जगने का टाइम हो जाता है, फिर उनको जॉब पे जाना रहता है, फिर उनको रोटी खिलाती है, फिर उनको खिलाकर फिर उनको ऑफिस के लिए भेजती है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर सास ससुर इत्यादि घर में और भी सेवाएं रहता है वो सब करती है, फिर घर में झाड़ू पोछा इत्यादि वो सब करते 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 संध्या समय हो जाता है, फिर से वो खाना बनाती है। इस प्रकार से जो दिनचर्या है एक गृहिणी का, ये दिनचर्या को गृहिणी करते करते जिस प्रकार से उस गृहिणी की सुंदरता होती है, वास्तव में वो सुंदरता ना ताजे ताजे ब्यूटी पार्लर से निकलने वाले व्यक्ति का नहीं होता है, ये एक 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 महात्मा ये बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। वास्तव में सुंदरता ना, किसी भी स्त्री का सुंदरता ना घर के गृहिणी कार्यों को करने में ही उसको सुंदरता होती है। कितना ये ब्यूटी पार्लर से निकलने के बाद कितने देर तक वो व्यक्ति सुंदर दिखता है, कुछ घंटों कुछ आधा घंटे, लेकिन वास्तविक सुंदरता को अगर चाहते हैं ना तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ये वास्तविक सुंदरता उसके उसके चेहरे पे तेज आएगा और वो नेचुरल तेज आएगा, कुछ आर्टिफिशियल कराने की जरूरत नहीं है। आज आर्टिफिशियल इसलिए लोग करा रहे हैं कि उठते हैं इतना लेट उठते हैं, कोई ठिकाना नहीं है, घर के अंदर नौकर लगा के रखते हैं, कुकिंग में भी कुकिंग के लिए भी नौकर लगा के रखते हैं इत्यादि इत्यादि बहुत सारे चीजें करते हैं, तो फिर उनको आर्टिफिशियल के जरिए जाना पड़ता है। आप देखिए ऐसी जो भी विलेज और गांव की स्त्रियां होती है इस प्रकार कोई आर्टिफिशियल चीजें नहीं यूज करते हैं, है ना। तो वास्तविक एक गृहिणी की सुंदरता ना इसी में है, माता यशोदा से इस बात को सीखना चाहिए। तो इस प्रकार से माता यशोदा क्या कर रही थी, मुख से कीर्तन कर रही थी भगवान के नामों का, और कीर्तन कर रही थी तो वर्णन आता है कि जब भी कीर्तन हम करते हैं ना तब क्या होता है, उस स्थान पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे अभी हमने कीर्तन किया, क्यों कीर्तन किया, भगवान की उपस्थिति कराने के लिए यहाँ पे कीर्तन किया शुरुआत में। अभी इस बीच में इस सभा में कृष्ण भी बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हैं ना मन से वो पता नहीं है, लेकिन कृष्ण बैठे हैं मुझे विश्वास है, इसलिए मैं उनके बारे में वर्णन कर रहा हूँ। आप लोग मन हो सकता है कहीं और लगाए हो, कहीं और घूमने चला गया हो, या घर के अंदर अभी कुछ कार्य करना है, अभी तो कोई मूवी आने वाला है, या फिर कोई सीरियल आना है, कभी सास बहू होती होगी, इस प्रकार के सीरियल क्या क्या सब आते रहते हैं, मन कभी भी उधर जा सकता है, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि कृष्ण यहाँ बैठे हुए हैं। इसलिए माता जी कल टेंशन हो रही थी कि आज 4 ही लोग आए, बोला कोई बात नहीं, आप एक भी रहोगे तो मैं सुनाऊंगा, आप नहीं रहोगे तो भी मैं सुनाऊंगा। क्योंकि कृष्ण की उपस्थिति मैं करता हूँ शुरुआत में मंगलाचरण और कीर्तन से, फिर उसके बाद मुझे कोई समस्या नहीं होता कि कोई आए या ना आए, क्योंकि कृष्ण उपस्थित हो गए, उनकी गुणानुवाद मेरे को कुछ करने का मौका मिलता है। तो इस प्रकार से माता यशोदा जब कीर्तन करने लगी ना तब क्या हुआ, देखिए उधर रूम के अंदर कृष्ण सोया हुआ था, जब कीर्तन करने लगे कृष्ण उठ गए, कृष्ण का भी प्राकट्य होने जा रहा है। कृष्ण उठकर क्या करने लगे, रोने लगे, और रोते रोते फिर आते अभी मैया को ढूंढ रहे, क्योंकि उठते ही माँ को, बालक माँ को ढूंढता है, पिता को ढूंढता है, माँ को ढूंढता है ना। तो बालक उठते ही माँ को ढूंढता है, तो खोजते खोजते कृष्ण आंख मसलते 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 मैया के पास गए। मैया क्या कर रही है अभी वहां पे, दही को मथ रही है। अभी छोटे से कृष्ण चलते चलते आ रहे हैं, देखिए कीर्तन करने से कृष्ण का प्राकट्य हो गया। इस बात को एक बार की घटना है कि नारद मुनि एक बार बैकुंठ लोक में गए, नारद मुनि स्वच्छंद कहीं पे भी जा सकते हैं, उनके पास हर जगह का वीजा पासपोर्ट हर जगह का है, वो किधर भी कभी भी पहुंच सकते हैं। नारद मुनि पूरे किसी भी लोक में कभी भी विचरण कर सकते हो, उनके पास पूरा एक सर्टिफिकेट मिला हुआ कि किधर भी जा सकते हो। तो नारद मुनि एक बार की बात घटना है कि नारद मुनि भगवान वैकुंठ भगवान के पास गए, वहां पे भगवान से मिले और भगवान के एक प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु आप कहाँ पे रहते हैं हमेशा, आप कहाँ पे निवास करते हैं, आपका निवास स्थान थोड़ा बता दीजिए। फिर अचानक मन में नारद मुनि क्या है कि प्रभु मैं क्या प्रश्न पूछ लिया है, आप तो वैकुंठ में है, हमेशा वैकुंठ में ही रहते होंगे, मैं क्या प्रश्न कर लिया ऐसा। तब भगवान स्वयं बताते कि नारद मुनि मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। देखिए भगवान के मुख से उद्गार है नारद मुनि के लिए, क्या कहते हैं, मैं वैकुंठ में नहीं निवास करता हूँ, नाहम वैकुंठ वासामी, मैं वैकुंठ में नहीं निवास करता हूँ। तो नारद मुनि बोले कि प्रभु आप वैकुंठ में नहीं निवास करते हो तो जरूर आप योगियों के हृदय में निवास करते होगे, क्योंकि योगी लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, सिर नीचे पैर ऊपर करते हैं, इतना कठिन कठिन तपस्या करते हैं योगी लोग, तो निश्चित रूप से आप योगियों के हृदय में रहते होगे, क्योंकि योगी लोग बड़े ध्यान करते हैं आपका, योगी नाम हृदयेश हुआ, निश्चित रूप से आप योगियों के हृदय में रहते होंगे। तब भगवान बोलते हैं नारद मैं ना तो वैकुंठ में रहता हूँ ना तो योगियों के हृदय में रहता हूँ। तब तो नारद मुनि बोले प्रभु अब बताई दीजिए मुझे, अब मैं डायरी पे लिखी लेता हूँ आप रहते किधर है। तो उस समय नारद मुनि को भगवान बोलते हैं कि तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहां पे रहता हूँ, यत्र गायन्ति मद्भक्ता, जहां पे मेरे भक्त हमारा नाम कीर्तन का स्मरण करते हैं, मेरी कथाओं को सुनते हैं, मैं वहां पे सदैव निवास करता हूँ। ये भगवान के मुख का उद्गार है कि मैं वहां पे सदैव निवास करता हूँ। तो भगवान कहाँ पे रहते हैं, जहां पे हमेशा उनके कथाओं का चलता है या उनका कीर्तन चलता है, उनके गुणानुवाद कुछ बातें चलता है, तो वहां पे भगवान निश्चित रूप से प्रकट रहते हैं। तभी देखिए यशोदा मैया कीर्तन करने लगी, कृष्ण पास में आ गए, कृष्ण पास में आके रो रहे, लेकिन माता यशोदा को सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो तो मस्त है, हाँ गा रही है, एकदम मत रही है। तो उस समय देखे कि कृष्ण देखे कि सुन नहीं रहे माँ, तो उसने क्या किया, उस मथनी को जो घुमा रही थी वो पकड़ लिया। तो अचानक यशोदा मैया का आंख खुली तो देखी, अरे कृष्ण है इधर, कृष्ण है। तो माता यशोदा बहुत खुश हुई, क्योंकि मैं जो मथ रही उसको रोक दिया इसने, मतलब इसके अंदर बल आ गया है ना। इस प्रकार के चेंजेस जब बच्चों के अंदर आता है, वो बड़े होते हैं, कुछ और एक्टिविटी अच्छे कार्य करते हैं, तो माता पिता बहुत खुश होते हैं, मतलब इसका प्रगति हो रहा है, बढ़ रहा है, हाँ इसकी बुद्धि आने लगी, अभी ये समझने लगा, ये भाषा समझने लगा, हाँ अभी कुछ समझ रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ रहा है, इस प्रकार से अच्छा लगता है। तो मैया यशोदा ने देखा कि अभी बालक को मेरे कृष्ण को बल आ गया है, क्योंकि इसने मेरे मथानी को रोक दिया। तो उस प्रकार से माता यशोदा ने देखा कि कृष्ण रो रहा है, क्योंकि ध्यान जैसे ही भंग हुआ देखा तो रो रहा है, तो तुरंत ही माता यशोदा ने उसको गोद में उठाकर और तुरंत अपने स्तनों को पान कराने लगी, क्योंकि कृष्ण को भूख लगी थी, और तुरंत अपने स्तनों को पान कराने लगी। और वहां पे एक सुंदर सा, देखिए सुंदर सा वहां पे घटना एक घटा कि उस समय क्या हुआ कि माता यशोदा मथनी तो चला रही थी, लेकिन थोड़े कुछ दूध को चूल्हे के ऊपर भी रखा था, क्योंकि वो भी, क्योंकि एक साथ में कई कार्य करते हैं ना, सुबह उठ के माता है उधर क्या बोलते, कपड़े धोने का मशीन चालू कर देंगे तो उधर धुलता रहेगा, इधर किचन में सब्जी कटिंग करेंगे, उधर दूसरा चूल्हा जलाएंगे, एक साथ में कई कार्य करते हैं। तो माता यशोदा भी सुबह का समय था और कई सारे कार्यों को संपन्न कर रही थी। तो जब बालक को पिलाने लगी तो उस समय चूल्हे के ऊपर दूध रखी थी जो, वो उबलने लगा दूध। अभी देखिए जब ही माता जो अपने पुत्र को स्तनपान कराती है ना, एक्चुअली में वही एक समय होता है जिसके कारण उस पुत्र और माता में प्रेम का आदान प्रदान होता है, वो जो प्रगाढ़ता जिसमें कि करोड़ों लोग के बीच में वो अपनी माँ को अपने को पहचान सकता है, तो इसी कारण वो पहचान सकता है क्योंकि वो एक स्तन को पान कराई हुई माता, क्योंकि वही एक समय होता है जो कि प्रेम का रिलेशन पुत्र और माँ में क्रिएट होता है। लेकिन दुर्भाग्य आज के समय की, आप सोचिए कि किस कृष्ण कितने साल के थे, 3 साल 2 महीने के कृष्ण थे, लेकिन आज ये दुर्भाग्य है हर एक घर का कि 3 साल तक बच्चों को कोई भी दूध नहीं पिलाता है, कोई भी नहीं पिलाता। कितने देर तक पिलाते हैं, 1 साल, 1 साल भी नहीं, 1 साल 1 महीना ज्यादा से ज्यादा हो भी। आजकल तो अब मैंने बहुत सारे जगह पे ऐसा देखा हूँ कि 5-6-7 महीना में ही बंद कर देते हैं, नहीं पिलाते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य एक्चुअली, ये बहुत बड़ा। आजकल के बच्चों का जो हाइपर होना इत्यादि अनेक रोगों का, क्योंकि माँ का जो दूध है ना वो अमृत के समान है, अगर वो समयानुसार अगर उतने समय तक नहीं मिलाना वो व्यक्ति हमेशा उसको पोषणता नहीं मिलेगा, हमेशा वो जीवन में कुछ ना कुछ दुखी रहेगा या तो उसको रोग आएंगे, क्योंकि वो अमृत के समान है। और वही एक समय होता है कि वो क्या करता है, उसका रिलेशन माँ के साथ क्रिएट होता है। तभी देखिए ऐसी जो माताएं होती थी जो कि अपने बालक को दो दो साल तक तीन तीन साल तक दूध पिलाती थी, ऐसी माताओं का जो दर्जा शास्त्रों में दिया गया है ना, वो दिया गया है दर्जा पद्मिनी के नाम से उनको पुकारा जाता था, पद्मिनी के नाम से। और उससे भी कम के जो दो साल या डेढ़ साल पिलाने वाली माताएं उनको कामिनी के नाम से दर्जा किया गया, उनको कामिनी कहा जाता है। लेकिन उससे कम की माताओं का शास्त्रों में नाम ही नहीं है, शास्त्रों में नाम नहीं दिया गया है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि क्या होता है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आजकल बच्चों को माँ क्या कर रही है कि कुछ ही समय के बाद 6-7 महीना 8 महीना बीतने के पश्चात वो बच्चों को या शुरुआत से ही आदत दे रही है बॉटल पिलाने का। मैं अभी क्या बोला, माँ अपने स्तन को पान कराती है तो बच्चा का जो प्रेम माँ के साथ उसका रिलेशन एक क्रिएट होता है जो कि पूरे जीवन भर वो रिलेशन बना रहता है। लेकिन आज क्या हो रहा है कि माताएं बॉटल देने के कारण क्या हो रहा है, अभी रिलेशन किसके साथ क्रिएट हो रहा है, बॉटल के साथ। तो क्या करता है, थोड़ा बड़ा होने के बाद वो कोको कोला पीता है, थोड़ा बड़ा होने के बाद कोको कोला पीता है, और थोड़ा बड़ा हो गया तो बियर पीता है, और थोड़ा बड़ा हो गया तो फिर बिस्किट पीता है। इस प्रकार से उसको क्योंकि रिलेशन जो देखिए शुरुआत में कहां क्रिएट हुआ, बॉटल से क्रिएट हुआ, रिलेशन बॉटल से क्रिएट हुआ, तभी वो बॉटल को छोड़ नहीं रहा है। कोको कोला से बियर से बिस्की। अभी देखिए जैसे जैसे बढ़ता गया ये सब समय, और उसके बाद क्या होता है, जब भी एज हो जाता है थोड़ा, अनेक रोगों से ग्रस्त होता है, फिर हॉस्पिटल में भी उसको बॉटल ही लगता है, और हॉस्पिटल में बॉटल को देखते देखते क्यों, क्योंकि रिलेशन किससे क्रिएट हुआ, बॉटल से, और अंत समय वो अंत तक बॉटल नहीं छोड़ा। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं ना, हमारा बेटा बहुत नालायक हो गया है, अभी छोड़ नहीं रहा है दारू पीना इत्यादि इत्यादि। अरे तुमने बॉटल पहले पकड़ा है क्यों, उसको बॉटल ही नहीं पकड़ाना चाहिए, एटलीस्ट उसको चम्मच से पिलाना चाहिए, कम से कम चमचा बनेगा चम्मच से पिला देना, ये बॉटल वाला सिस्टम हटाना चाहिए पूरा, बॉटल पिलाना ही नहीं चाहिए बच्चों को। तो इस प्रकार से जो माता यशोदा, क्योंकि वो प्रेम जो है ना क्रिएट वो माँ और बच्चे के बीच में, तभी हर एक माँ ऐलान करती थी, बेटा मेरे दूध का लाज रखना, आपको पता है दूध का लाज रखना, मेरे एक छत्री जो होते थे ना, पहले की माँ होती थी ना अपने बच्चे के ऊपर गर्व करती थी कि बेटा मेरे दूध का लाज रखना। लेकिन आजकल बेटा आते है कि हे माते तुमने मेरे को इतना दूध पिलाया है और निश्चित रूप से इस दूध का मैं लाज रखूंगा, माँ बोलती है कि भाई बेटा तुम मेरे दूध का लाज छोड़ो, पहले दूध वाले का कर्जा चुका दो क्योंकि पैकेट का दूध पिलाया हुआ है, पैकेट का दूध पिलाया हुआ है। क्या धारणा बन गई मैं बताता हूँ, देखिये ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये धारणा कैसी बन गई माताओं के अंदर आज कि स्तन का पान कराने से उनकी सुंदरता चला जाएगी, ये धारणा बन चुकी है माताओं के अंदर, उनकी सुंदरता चला जाएगी, लेकिन सुंदरता उससे जाता नहीं है, ये बहुत गलत धारणा है। कभी भी माँ को समय के अनुसार जितना समय किया गया है उस समय तक उसको बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए, नहीं तो फिर वही वो बच्चा नालायक के अलावा कुछ नहीं बनेगा। क्योंकि सबसे प्रथम जो है ना उस बालक का, उस बच्चे का जो गुरु है वो माँ है, वो सही तरह से उसको संस्कार दिया तो बच्चा आगे चल के बहुत अच्छा बनता है। तो इस प्रकार से जो माँ है अभी क्या कर रही है, स्तनपान करा रही है ना, स्तनपान कराते कराते उधर क्या रखा हुआ है चूल्हे पे, दूध रखा हुआ है, अभी दूध उबलने लगा, उफान मारा और दूध चूल्हे के ऊपर गिरने लगा। अभी आचार्य लोग क्या बताते पता है, अभी वो दूध किसके लिए रखा था, कृष्ण के लिए रखा था माया सुधा ने, कि वो पद्मगंधा दूध गाय का दूध था, वो अमृत के समान था, वो दूध उसको रखी थी कृष्ण को पिलाने के लिए ही। लेकिन अभी क्या कृष्ण को स्तन पिला रही है, तो दूध ने देखा कि अब तो बालक जो कृष्ण जो है भगवान माँ के स्तन को पान करके वो संतुष्ट हो रहे, परम आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं, अभी मेरा कुछ काम नहीं है, मेरा कुछ काम नहीं, इसलिए अपने आप को आत्महत्या करने लगा, अपने आप को उस जलाने लगा कि ऐसा जीवन क्या जी के फायदा जहां जिस जीवन में कृष्ण ना हो, क्योंकि उस देख रहा है दूध है, देख रहा है दूध कि वो कृष्ण जो है अभी माँ का दूध पी रहे हैं, वो परम संतुष्ट हो जाएंगे, मेरा कुछ काम ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी सीख मिलने वाली बात है कि एक व्यक्ति के जीवन में भगवान का कितना बड़ा अहम भूमिका है। उनके लिए उनका जीवन होना चाहिए, उनके अनुसार उनका जीवन यापन करना चाहिए, नहीं तो वो जीवन कुछ कार्य का नहीं, कुछ काम का नहीं वो जीवन। तो इस प्रकार से वो दूध भी इसलिए उफान मारने लगा। माता यशोदा ने क्या किया, अभी वो दूध को बचाने को सोचा कि स्तनपान तो मैं कभी भी करा दूंगी, हाँ उस दूध को पहले बचाया जाए क्योंकि वो दूध कितना इंपॉर्टेंस है। तुरंत बच्चे को छुड़ा कर नीचे रखी और क्या किया, दूध को किचन में भागी दूध को बचाने के लिए। अभी इधर तो कृष्ण अभी बालक, इतना क्रोध आया कि वो छड़ी दूध एक छोटा सा टोप में रखा हुआ उसके कारण मुझे नीचे रख दिया है? मैं पूरे ब्रह्मांड का स्वामी और इधर आया हूं और मुझे छोड़कर सिवा एक छोटा सा दूध बचाने के लिए चली गई। इस प्रकार का क्रोध आया उस बालक के अंदर, स्वाभाविक है बालक के अंदर एक क्रोध आता है, तुरंत रो रहा है। बालक के अंदर कई प्रकार के मन के अंदर उतल पुतल आता है, थोड़ी देर रोता है तब तक कोई कुछ अच्छा बोल दिया तो हंसने लगता है, फिर तब तक कोई सुना दिया कुछ तो फिर से दुखी हो जाता है। इस प्रकार का कंटिन्यू उसके अंदर उतल पुतल चलता है। तो इस प्रकार से इधर कृष्ण दुखी हुए। तो माता अभी क्या गई, किचन में गई तो किचन में दूध ही नहीं और कार्य था, वो सब करने लगी। अभी इधर इनको इतना क्रोध आया कि क्या हुआ, वो जो मथनी में रख के सुंदर सा इतना ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 2 घंटा मेहनत किया था ना, अभी पूरा सुंदर तरीके से अभी मक्खन ऊपर आ चुका था, इतना मेहनत करने के बाद मक्खन ऊपर आ चुका था, उस इतने बड़े जो मटके को कृष्ण ने क्या किया, फोड़ दिया। और कहां से फोड़ा पता है, दिमाग लगा के फोड़ा, एकदम नीचे से फोड़ा और जैसे ही नीचे से फोड़ा सब के सब 2 घंटा का इतना मेहनत माँ ने जो किया था वो पूरा नीचे बह गया। अभी जैसे ही फोड़ा और सब बाहर निकलने लगा ना, तो एकदम डर गए बालक, अभी तो मैया मारेगी, डर आ गया उनके अंदर और इतना कांपने लगे। और तुरंत ही क्या हुआ, उसको देख के कि अभी क्या करे, भागने लगे, अभी भागो इधर से नहीं तो मैया आएगी तो पिटेगी। तो उधर से भाग के निकल के गए और भाग के बाहर उधर आंगन में उखल था, उखल के ऊपर चढ़ गए और पर्दे को लगा दिया, उधर छुप के बैठ गए। अभी माता यशोदा किचन से बाहर आई, तो देखी कि बाप रे बाप, अभी तो पूरा दूध दही पूरा बाहर गिरा हुआ है, इतना मैंने मेहनत किया पूरा गिरा हुआ है, कैसे गिरा। तो देखी कि नीचे फूटा हुआ है, कौन फोड़ा इसको, क्योंकि उसको विश्वास नहीं हो रहा था 3 साल का बालक कैसे फोड़ सकता है। तो फिर बाद में उसने देखा कि कौन फोड़ा। तभी कृष्ण जब भागे थे ना, दूध दही तो गिरा हुआ था, तो उनके चरण के जो चिन्ह है ना उसमें लगे हुए थे, तो समझ गए कि ये तो कृष्ण का उसका ही काम है। तो खोजने लगे, तुरंत क्या किया, छड़ी उठाया। माँ को क्रोध आया और छड़ी उठाया माँ ने, और उसके बाद वो खोजने लगे किधर है करके। सब खोजते जिस जगह पे कृष्ण चढ़ के उखल के ऊपर बैठे हुए थे, माया यशोदा ने वो पर्दे को हटाया तो तुरंत कृष्ण उस उखल से कूद कर नीचे और भागने लगे। अभी माया यशोदा क्या कर रही है, पीछे दौड़ा रही है, कृष्ण भाग रहे हैं। अभी सोचिए कृष्ण को कौन पकड़ सकता है, बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि भी बड़ी बड़ी तपस्या करके सालों तक उनको वश में नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे कृष्ण को कौन पकड़ सकता है। अभी माया यशोदा डंडा लेके पीछे से दौड़ा रही है, वो पकड़ नहीं पा रही है। लेकिन जैसे ही भगवान ने देखा, क्योंकि अभी माँ यशोदा दौड़ाते ना, वो पूरा उनका जो शरीर जो सोना एकदम भीग चुका था। सुखदेव गोस्वामी पाद बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि माँ का जो शरीर था इस समय गहनों से सुसज्जित था, सुबह सुबह उठ के पूरा तैयार हुई थी और सब गहने एक एक करके गिरने लगे, माँ को पसीने आने लगे, लेकिन कृष्ण पकड़ में नहीं आ रहे, भागते ही जा रहे, अब पकड़ लूंगी करके लेके पकड़ में नहीं आ रहे। तो उस समय भगवान ने देखा कि माँ यशोदा ने कितना मेहनत कर रही है मेरे को पकड़ने के लिए, कितना मेहनत कर रही है। तब भगवान ने उनके ऊपर कृपा किया। जैसे ही भगवान ने कृपा किया तुरंत ही वो पकड़ में आ गए। जब तक भगवान कृपा नहीं कर सकते तब तक हम कितना भी योग साधना कर ले, हम उनको कभी भी पकड़ नहीं सकते हैं। उनकी कृपा से ही ये संभव हो सकता है कि हम उनको पकड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से माँ यशोदा ने क्या किया, कृष्ण को पकड़ लिया। और पकड़कर उन्होंने क्या किया, जिस उखल का संग किया था
जिस उखल के ऊपर बैठे थे जाके ना, उस उखल के साथ ही कृष्ण को रस्सी लेकर सोची कि आज तो इसको बांधूंगी, बहुत नटखट हो चुका है आज। माँ यशोदा कन्फर्म हो गई, अभी तक गोपियां कंप्लेन करती थी, माया सोदा कभी भी विश्वास नहीं करती थी, मेरे घर में दूध दही की कमी है क्या, तेरे घर में चोरी करने जाएगा, हाँ मेरे घर में कमी है क्या, इस प्रकार से गोपियों को बोला करते थे। लेकिन आज कंफर्म हो गई, क्योंकि जब उखल के ऊपर भाग के वो बैठे थे ना, केवल बैठे ही नहीं थे, बंदरों को उठा उठा के मक्खन खिला रहे थे उधर बैठकर, तो कंफर्म हो गई कि चोरी तो पक्का करता होगा, इसलिए उसने सोचा कि आज इसको बांधूंगी, मैं बांध के रखूंगी। इसलिए उसी उखल में, जिस उखल का संग किया था, एक आचार्य कहते हैं कि उखल का संग किया था, इसलिए उखल मतलब खल व्यक्ति का संग किया था, खल व्यक्ति का संग किया ना, उसी के साथ बांधूंगी इसको। तो इस प्रकार से माता यशोदा ने रस्सी लाकर घर में से कृष्ण को बांधने लगी उस उखल से, जो चित्र हम देख रहे हैं कि बांध रही हो। लेकिन हो क्या रहा है, अभी जब भी बांध के रस्सी घुमा के ला रही है ना, वो दो अंगुल छोटे पड़ जा रहे, तो दूसरी रस्सी को जोड़ रही है, फिर से घुमा के बांधने जा रहे, फिर से दो अंगुल छोटे पड़ जा रहे। घर पूरा नंद भवन के घर के अंदर का सारी रस्सियों को ला चुकी, सब लोग को बुला के रस्सी को ला ला के वो बांधे, लेकिन जब भी बांधने जा रही है दो अंगुल छोटे पड़ जा रहे। माँ यशोदा का बांधते बांधते पसीने निकल गए, यहां तक कि वो चिल्लाने लगे, गोपियां तुम लोग शिकायत करते थे ना, सच में चोरी करता था, आज मैं कंफर्म हो गया, एक काम करो तुम्हारे घर से रस्सी लेकर आओ। गोपियां भी रस्सी लेकर आई, सब रस्सी को जोड़ दिया, वर्णन है कि पूरे ब्रज की रस्सी लेकर आए, लेकिन फिर भी कृष्ण बदे नहीं, दो अंगुल छोटे बढ़ जाते। कृष्ण अगर चाहे ना तो कौन उसको बांध सकता है, कोई नहीं बांध सकता है उनको। लेकिन इतनी देखकर अभी माँ का एकदम हालत खराब, माँ ने एकदम एकदम लथपथ हो गई, इतना थक गई मैया यशोदा की देखकर कृष्ण ने कृपा किया, और जैसे ही माँ के इस प्रेम और इस बांधने के प्रयास को देखा, तो दो अंगुल प्रतीक करता है कि माँ ने का जो प्रयास, क्योंकि भगवान प्रयास देखते हैं कि कितना इसने प्रयास किया, कितना भक्ति है इसके अंदर और प्रयास, ये दो अंगुल प्रतीक है कि कितना भक्ति कर रहा है और कितना प्रयास कर रहा है वो। तो ये दो चीजों को जो पूर्ण रूप में यशोदा मैया के अंदर भगवान ने देखा, तब वो बद गए। लेकिन जैसे ही बद गए तो कृष्ण क्या करने लगे, वो दूसरे श्लोक में वर्णन है, अरुदंतम मुहुर नेत्र यज्ञम रेजंतम कराम्बुज युग्मेन सातंक नेत्रम मो श्वास कंप त्रिरेकाक कंठ स्थित ग्रैव दामोदरम भक्ति बदम। अभी बाधे जैसे ही कृष्ण क्या करने लगे, रुदंतम रोने लगे, बाला कभी बांध दिया मैया ने, रोने लगे वो बाल, कृष्ण रोने लगे। अब मुहुर रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम, और दोनों आंखों से अश्रु गिरने लगा उनका, और आंख को मल रहे हैं, आंख को ऐसा ऐसा करके रो रहे हैं, अभी बांध दिया मैया ने। और उसके बाद कराम भोज युग, अपने दोनों हाथों से, दोनों कर कमलों से अपने आंख को मिजते हुए वो रो रहे हैं। और उसके बाद मुहु श्वास कंप त्रिरेखा कखंट, और कैसा वो इतने डरे हुए है कि उनके कंठ से वो सिसकियां, बालक एकदम डर जाता है ना, तो सांस सांस उसका चढ़ने लगता है, सिसकियां भरने लगते हैं। तो इस प्रकार से डर कर सोचिए कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, जिसके अंडर में पूरा मया दक्षिण प्रकृति सुयचे सचराचरम पूरे ब्रह्मांड कार्य करते, आज वो कृष्ण सिसकियां भर रहे हैं, केवल एकमात्र एकमात्र मैया यशोदा के प्रेम के बंधन में पड़े हुए हैं, इसलिए इस प्रकार की लीलाओं को संपन्न कर रहे हैं। तो आज वो कृष्ण रोने लगे, और लेकिन दामोदर भक्ति वद्धम शब्द का अर्थ है कि वो भक्ति के द्वारा बांधे गए, उनको कोई बांध नहीं सकता है, ऐसे दामोदर, दामोदर मतलब मैं क्या बताया था, अच्छा कल बताया था, आप नहीं आए थे। दामोदर मतलब हम जिनका रोज दीप दान करते हैं उनको दामोदर बोलते हैं, दामोदर मतलब दाम मतलब रस्सी और उदर मतलब पेट, तो जिनका उदर रस्सी से बंधा हुआ उसको दामोदर कहते हैं। तो दामोदर, ऐसे दामोदर जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, उनको कौन बांध सकता है, लेकिन भक्ति वद्धम वो भक्ति के बंधन से बंधे हुए है। वहां पे हम कभी भी भक्ति के द्वारा ही भगवान को बांध सकते हैं, प्रीति पूर्वकम, जब तक प्रीति नहीं रहेगा तब तक हम भगवान को बांध नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से माता यशोदा के भक्ति और प्रयास को देखकर भगवान बंध गए। अब दामोदर क्यों बंध गए, इसका वर्णन सत्यव्रत मुनि आगे के श्लोकों में करते हैं, तो हम आगे का आगे सुनेंगे, ठीक है, टाइम हो गया ना, अभी नौ पाँच हो गया, तभी हम इस अष्टकम को गाते हैं और गा के हम दीपदान करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक, हम गाते हैं, चलिए सबके पास पेपर ले लीजिए, सब लोग गाइए पीछे से। हाँ,
नमामिश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमानम्। यशोदा व्योलोकलादवमानं परामिष्टमात्यन्ततो धृतगोप्यामोहर्नेत्रायुष्मं जानाम कराम बुजायुग में न सातंग नेतां कराम बुजायुग में न सातंग नेतां मो सात कंपत्रे कांग कंठा दामोदरं भक्ति दामोदरं भक्ति दीक्षालीला भेदानन्द कुण्डे गोतम निमञ्जन्त मार्ष्य पर्यन्त ताप माता स्तम सखा वृति बंदे ताप माता स्तम सखा वृति बंदे राम देवा मोक्षम नामोक्ष वदिम्भा जानन्देणे हम हरे सादपिह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा निमानस्याभिरासाभिमाने इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा निमानस्याभिरासाभिमाने इदं ते मोकाम्बोज Oh, God. वाला विमाना चाहते दिना बता दूं माने जाने दस देश बता दो माने गे दस देश माधव दया मुझे तो भक्ति बाज पितो माधव दया मुझे तो भक्ति बाज पितो सता प्रेम भक्ति सता में प्रयाच सता में प्रयाचे हो में श्री दामोदरे नमस्ते सुदामे सुरे श्री रामे हरि उदराया तिवच गामे सुरे श्री रामे हरि उदराया नमो राधिकाए पतिया पियाए नमो नंद लीलाय देवाय तुभ्यम नमो राधिकाए पतिया पियाए नमो नंद लीलाय देवाय तुभ्यम हरे कृष्णा
Rama
Krishna, 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 Krishna.